शुभ संध्या और ओपन क्लॉ डेली में आपका स्वागत है। वह पॉडकास्ट जो आपके अपने आई एजेंटों को चलाने, आपके डेटा को सुरक्षित रूप से अपनी छत के नीचे रखने और स्थानीय भाषा मॉडल की निरंतर विकसित होती दुनिया में नेविगेट करने के बारे में है। मैं हूं नोवा और हमेशा की तरह मेरे साथ मेरे शानदार सहमेजबान अलॉय हैं।
नमस्ते दोस्तों, यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पास आज रात के लिए एक बहुत बड़ा एपिसोड तैयार है। बात करने के लिए बहुत कुछ है, फाउंडेशन की खबरें, सुरक्षा पर गहरा विश्लेषण, नया और शानदार हार्डवेयर, नए मॉडल की रिलीज, कम्युनिटी की झलकियां, परिनियोजन, डिप्लॉयमेंट के विकल्प और निश्चित रूप से अंत में हमारा टिप्स सेगमेंट। सच कहूँ तो मुझे सब कुछ फिट करने के लिए अपने नोट्स को 3 बार पुनर्गठित करना पड़ा।
मुझे पता है ना? पिछले कुछ हफ्ते असाधारण रहे हैं। सिर्फ 1 महीने पहले ओपन क्लॉ डेवलपर्स और शौकियों के लिए एक रोमांचक लेकिन अपेक्षाकृत छोटा प्रोजेक्ट था, और अब हम रॉयटर्स, फोर्ब्स, टेककrunch में इसके बारे में लेख देख रहे हैं। मुख्यधारा ने इस पर ध्यान दिया है और मुझे लगता है कि आज रात का एपिसोड दिखाएगा कि वास्तव में ऐसा क्यों है।
100% तो अपना पसंदीदा पेय लें, आराम से बैठें और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वह बड़ी खबर जिसने पूरी कम्युनिटी को उत्साहित कर दिया। सेक्शन 1 बड़ी खबर, ओपन क्लॉ फाउंडेशन और पीटर स्टीनबर्गर।
सही, तो यहाँ कहानी है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर काफी उपयुक्त रूप से ओपन क्लॉ के निर्माता और प्रेरक शक्ति पीटर स्टीनबर्गर ने घोषणा की कि वह ओपन एआई में शामिल हो रहे हैं। अब इससे पहले कि कोई घबराए, उस घोषणा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा भाग भी है। ओपन क्लॉ एक स्वतंत्र ओपन सोर्स फाउंडेशन में परिवर्तित हो रहा है।
हाँ, और मुझे लगता है कि उन दोनों घोषणाओं का एक साथ होना वास्तव में महत्वपूर्ण है। स्टीनबर्गर ने केवल प्रोजेक्ट को छोड़कर हाथ नहीं खींचा, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने में समय बिताया कि कदम उठाने से पहले शासन संरचना, गवर्नेंस स्ट्रक्चर मौजूद थी। यह जिम्मेदार नेतृत्व है।
बिल्कुल, और अपने शब्दों में पीटर ने इसे इस तरह कहा, मैं सभी के लिए एजेंट लाने पर काम करने के लिए ओपनएआई में शामिल हो रहा हूँ। यह उनका मिशन है। वह किसी गुप्त आंतरिक प्रोजेक्ट पर काम करने नहीं जा रहे हैं, वह उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए वहां जा रहे हैं जो ओपन क्लॉ के साथ शुरू हुआ था, लेकिन उस पैमाने पर जो केवल ओपनएआई जैसी कंपनी ही सक्षम कर सकती है।
यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण अंतर है। वह प्रोजेक्ट को छोड़ नहीं रहे हैं, वह इसकी पहुंच का विस्तार कर रहे हैं। और आप बता सकते हैं कि यह काफी समय से उनके दिमाग में था। ब्लॉग पोस्ट में उन्होंने इस बारे में बात की कि वह एक और कंपनी क्यों नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा, और मैं यहां सीधे उद्धृत कर रहा हूं, मैंने पहले ही कंपनी बनाने का पूरा खेल खेला है, इसके लिए अपने जीवन के 13 साल दिए हैं और बहुत कुछ सीखा है। अब मैं जो चाहता हूं वह है दुनिया को बदलना।
13 साल एक उद्यम में निवेश करने के लिए करियर का एक बड़ा हिस्सा, और यह तथ्य कि उन्होंने खुद एक कंपनी को बड़ा करने की कोशिश करने के बजाय ओपनएआई में शामिल होने के लिए उससे दूरी बनाई, आपको उनकी प्राथमिकताओं के बारे में कुछ बताता है। उन्हें फाउंडर लाइफस्टाइल में दिलचस्पी नहीं है, वह प्रभाव चाहते हैं।
और वह जिस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं वह अविश्वसनीय रूप से महत्वाकांक्षी है, एक ऐसा एजेंट बनाना जिसे मेरी माँ भी इस्तेमाल कर सके। यह पहुंच एक्सेसिबिलिटी का अंतिम परीक्षण है। डेवलपर्स नहीं, टेक प्रेमी नहीं, आपकी माँ। वह व्यक्ति जो हर बार प्रिंटर में कुछ अजीब होने पर आपको फोन करता है। अगर उनकी माँ इसका उपयोग कर सकती हैं, तो उन्होंने वास्तव में उपयोगिता की समस्या को हल कर लिया है।
मुझे वह फ्रेमिंग पसंद है। यह वास्तव में सभी तकनीकी शोर को काट देता है। अब फाउंडेशन वाला हिस्सा, यहाँ चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। पीटर ने खुलासा किया कि ओपनएआई पहले से ही प्रोजेक्ट को प्रायोजित कर रहा है और वे इस फाउंडेशन को वास्तविकता बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि ओपनएआई इसे एक फाउंडेशन बनाने पर काम कर रहा है।
और सैम ऑल्टमैन ने व्यक्तिगत रूप से एक प्रतिबद्धता के साथ अपनी बात रखी। यहाँ उद्धरण है, ओपनक्लॉ एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के रूप में एक फाउंडेशन में रहेगा जिसे ओपनएआई समर्थन देना जारी रखेगा। यह कोई अस्पष्ट वादा नहीं है, यह शीर्ष से एक विशिष्ट शासन प्रतिबद्धता है।
फाउंडेशन की संरचना पर ही ध्यान देना चाहिए। पीटर ने इसे एक ऐसी जगह के रूप में वर्णित किया जो विचार को हैकर्स और उन लोगों के लिए एक जगह बनी रहेगी जो अपने डेटा का स्वामी बनने का रास्ता चाहते हैं, जिसका लक्ष्य और भी अधिक मॉडलों और कंपनियों का समर्थन करना है। यह एक व्यापक मंच है। वे ओपनक्लॉ को केवल एक मॉडल प्रदाता या एक कंपनी से जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि यह एक तटस्थ मंच हो जो व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र की सेवा करे।
और यहाँ एक विवरण है जो मुझे लगता है कि बहुत से लोग भूल गए। पीटर ने पिछला हफ्ता सैन फ्रांसिस्को में प्रमुख प्रयोगशालाओं के साथ बात करने, लोगों और अप्रकाशित शोध तक पहुँच प्राप्त करने में बिताया। यह आपको बताता है कि यह आखिरी मिनट का निर्णय नहीं था। वह वहाँ संबंध बना रहे थे, संसाधन जुटा रहे थे, यह सुनिश्चित कर रहे थे कि जब फाउंडेशन लॉन्च हो तो वह शून्य से शुरू न हो। वह ऐसे संबंध बना रहे हैं जिससे पूरे ओपन सोर्स एजेंट पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होगा।
मीडिया कवरेज दर्शाता है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। रॉयटर्स ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें इसे ओपन सोर्स एआई शासन के व्यापक रुझान के हिस्से के रूप में पेश किया गया। फोर्ब्स ने व्यावसायिक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया कि क्या होता है जब एक सफल ओपन सोर्स संस्थापक को ओपनएआई जैसे प्रमुख खिलाड़ी द्वारा शामिल कर लिया जाता है। टेककरंच ने डेवलपर कम्युनिटी के लिए तकनीकी निहितार्थों पर गहराई से चर्चा की।
द कन्वर्सेशन ने ओपनक्लॉ और मोल्टबुक प्रोजेक्ट की तुलना सोशल मीडिया के शुरुआती दिनों से करते हुए एक बहुत ही विचारशील लेख भी चलाया, जब माइस्पेस और फेसबुक और ट्विटर सभी नए थे और कोई नहीं जानता था कि कौन सा मॉडल जीतेगा। वे तर्क दे रहे हैं कि हम व्यक्तिगत एआई एजेंटों के साथ इसी तरह के मोड़ पर हैं।
वह ऐतिहासिक फ्रेमिंग आकर्षक है क्योंकि यह कुछ महत्वपूर्ण बात उजागर करती है। हम अभी भी इस तकनीक के बहुत शुरुआती दौर में हैं। यह तथ्य कि ओपनक्लॉ इतनी जल्दी फाउंडेशन के स्तर तक पहुंच गया है वास्तविक टिके रहने की क्षमता का सुझाव देता है, लेकिन अभी बहुत विकास होना बाकी है। और मुझे लगता है कि शुरुआती सोशल मीडिया के साथ समानता एक और मायने में उपयुक्त है। उस समय लोगों ने फेसबुक को कॉलेज के कमरे का खिलौना समझकर खारिज कर दिया था। देखो वह क्या बन गया। मुझे संदेह है कि व्यक्तिगत एआई एजेंट भी इसी तरह के रास्ते पर चलेंगे, एक छोटे से कौतूहल से आवश्यक बुनियादी ढांचे तक।
यह वास्तव में एक अच्छा बिंदु है। और इस बार जो अलग है वह है ओपन सोर्स फर्स्ट दृष्टिकोण। शुरुआती सोशल मीडिया उन कंपनियों द्वारा बनाया गया था जिनके पास पहले दिन से ही लाभ कमाने का उद्देश्य था। ओपनक्लॉ एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ और फाउंडेशन मॉडल के माध्यम से वैसा ही बना हुआ है। प्रोत्साहन संरचनाएं मौलिक रूप से भिन्न हैं और मुझे लगता है कि यह इस तकनीक के विकास के लिए मायने रखता है। और कम्युनिटी की प्रतिक्रिया जबरदस्त रही है। डिस्कॉर्ड सक्रिय हो गया, गिटहब स्टार्स बढ़ गए और कई प्रमुख योगदानकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से दीर्घकालिक भागीदारी के लिए प्रतिबद्धता जताई। प्रोजेक्ट केवल संस्थापक के जाने के बाद जीवित ही नहीं है, यह उस कम्युनिटी के कारण फलफूल रहा है जिसे स्टीनबर्गर ने इसके चारों ओर बनाया था।
यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि ओपन सोर्स को कैसे काम करना चाहिए। इसे बनाएं, कम्युनिटी को बढ़ाएं, शासन स्थापित करें और फिर इसे आगे ले जाने के लिए कम्युनिटी पर भरोसा करें। स्टीनबर्गर को बधाई और ओपनएआई में उनके लिए शुभकामनाएं। सेक्शन 2, सुरक्षा पर गहरा विश्लेषण, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, गोपनीयता संबंधी चिंताएं और सर्वोत्तम अभ्यास।
अब चलिए सुरक्षा की ओर रुख करते हैं, जो गंभीर ध्यान देने योग्य है, क्योंकि ओपनक्लॉ क्या कर सकता है, इस बारे में इस पूरे उत्साह के साथ हमें इस बारे में बात करने की जरूरत है कि यह क्या कर सकता है जिसे आप शायद नहीं चाहेंगे कि वह करे।
यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है और मुझे खुशी है कि हम इसके लिए उचित समय दे रहे हैं। चलिए क्राउडस्ट्राइक के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने एजेंटिक एआई सिस्टम को लक्षित करने वाले प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हमलों पर एक वास्तव में उत्कृष्ट लेख प्रकाशित किया है और उन्होंने विशेष रूप से ओपनक्लॉ को एक केस स्टडी के रूप में बुलाया है।
जो लोग परिचित नहीं हैं, उनके लिए प्रॉम्प्ट इंजेक्शन तब होता है जब कोई हमलावर ऐसा इनपुट तैयार करता है जो एआई एजेंट को वह करने के लिए धोखा देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। और ओपनक्लॉ के साथ जोखिम एक साधारण चैटबॉट की तुलना में अधिक है, क्योंकि इन एजेंटों के पास वास्तविक उपकरण टूल्स हैं। वे आपकी फाइलें पढ़ सकते हैं, आपकी ओर से संदेश भेज सकते हैं, कमांड निष्पादित कर सकते हैं, एपीआई के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं।
बिल्कुल, क्राउडस्ट्राइक ने हमले के तरीकों का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है जो वास्तव में पढ़ने लायक है। डायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन है, जहां दुर्भावनापूर्ण इनपुट सीधे उपयोगकर्ता के माध्यम से आता है। फिर इनडायरेक्ट इंजेक्शन है, जहां पेलोड दस्तावेजों, ईमेल या वेब पेजों में छिपा होता है जिन्हें एजेंट संसाधित करता है। और सबसे डरावना चेन्ड इंजेक्शन, जहां हमलावर एक टूल का उपयोग पेलोड डालने के लिए करता है जो तब सक्रिय होता है जब कोई दूसरा टूल उसे उठाता है।
वह चेन इंजेक्शन परिदृश्य सुरक्षा टीमों के लिए किसी बुरे सपने जैसा है। कल्पना कीजिए कि आपका एजेंट एक निर्दोष दिखने वाला ईमेल पढ़ता है और ईमेल के मुख्य भाग में एक प्रॉम्प्ट इंजेक्शन छिपा होता है जो तब सक्रिय होता है जब एजेंट ईमेल का सारांश देता है, जिससे वह आपकी SSH कुंजियों SSH कीज को किसी बाहरी सर्वर पर भेज देता है। क्राउडस्ट्राइक इसी तरह की चीजों के बारे में चेतावनी दे रहा है,
और यह काल्पनिक नहीं है। शोध में इन हमले के पैटर्न का अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण किया गया है। अच्छी खबर यह है कि ओपनक्लॉ टीम इन जोखिमों को कम करने के बारे में सक्रिय रही है। उनके सुरक्षा दस्तावेजों को नियमित अपडेट मिल रहे हैं और अनुमति प्रणाली परमिशन सिस्टम काफी विस्तृत है।
लेकिन हमें पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोध के बारे में भी बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया जिसका शीर्षक ओपनक्लॉ को गोपनीयता का बुरा सपना कहता है। यह काफी भड़काऊ है।
यह है, और मुझे लगता है कि सच्चाई अधिक सूक्ष्म है। उनका मूल तर्क ठोस है, कोई भी सिस्टम जिसकी आपकी व्यक्तिगत फाइलों, संदेशों और अनुप्रयोगों तक गहरी पहुंच है, वह स्वाभाविक रूप से हमले के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाता है। यह तथ्य है, लेकिन इसे बुरा सपना कहना यह दर्शाता है कि कोई समाधान नहीं है, और ऐसा नहीं है।
सही, समस्या यह नहीं है कि ओपनक्लॉ में ये क्षमताएं हैं, समस्या यह है कि उपयोगकर्ताओं को यह समझने की आवश्यकता है कि वे किस चीज तक पहुंच प्रदान कर रहे हैं। और ईमानदारी से, ज्यादातर लोग अपने फोन पर भी अनुमति संवादों परमिशन डायलॉग्स को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए यहां सूचित सहमति इन्फॉर्म्ड कंसेंट के आसपास एक वास्तविक चुनौती है।
कास्पर्स्की ने भी इस पर अपनी राय दी और उनका विश्लेषण अधिक संतुलित था। उन्होंने जोखिमों को स्वीकार किया लेकिन व्यावहारिक सिफारिशों पर ध्यान केंद्रित किया। अपने ओपनक्लॉ इंस्टॉलेशन को अपडेट रखें पैच में अक्सर सुरक्षा सुधार होते हैं। क्लोहब, क्लोहब से कौन से कौशल स्किल्स इंस्टॉल करते हैं, इसके बारे में चयनात्मक रहें। अनुमति देने से पहले प्रत्येक कौशल द्वारा मांगी गई अनुमतियों की समीक्षा करें और शायद अपने एजेंट को रूट एक्सेस के साथ न चलाएं।
वह आखिरी वाला स्पष्ट लगता है, लेकिन आप आश्चर्यचकित होंगे। मैंने फोरम पोस्ट देखे हैं जहां लोग ओपनक्लॉ को रूट के रूप में चला रहे हैं क्योंकि इसे सेटअप करना आसान था। कृपया ऐसा न करें।
न्यूनतम विशेषाधिकार का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज यहां भी उतना ही लागू होता है जितना कि कहीं और। अपने एजेंट को वह न्यूनतम अनुमति दे जिसकी उसे अपना काम करने के लिए आवश्यकता है और कुछ नहीं।
तो सुरक्षा खंड को संक्षेप में कहें तो जोखिम वास्तविक हैं, शोध समुदाय ध्यान दे रहा है और समाधान उपलब्ध हैं। यह सब जागरूक होने के बारे में है। अपनी अनुमतियों को जानें, चीजों को अपडेट रखें, आप क्या इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में चयनात्मक रहें और अपने एआई एजेंट के साथ उसी सुरक्षा स्वच्छता सिक्योरिटी हाइजीन का पालन करें जो आप किसी अन्य सॉफ्टवेयर के साथ करेंगे जिसकी आपके जीवन तक पहुंच है।
खूबसूरती से कहा, सुरक्षा पहले सुविधा बाद में। सेक्शन एक्स, कवरेज और प्रतिक्रिया।
चलिए अब कुछ और बात करते हैं जो वास्तव में यह संकेत देती है कि ओपनक्लॉ कितना आगे आ गया है, मीडिया कवरेज। क्योंकि चाहे हमें पसंद हो या न हो, जब प्रमुख प्रकाशन ध्यान देना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि तकनीक ने एक सीमा पार कर ली है।
बिल्कुल, और हाल ही में कवरेज आकर्षक रहा है, न केवल इसलिए कि यह ओपनक्लॉ के बारे में क्या कह रहा है, बल्कि इसलिए भी कि यह बताता है कि उद्योग सामान्य रूप से एआई एजेंटों के बारे में क्या सोच रहा है। चलिए फोर्ब्स फॉर्च्यून के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि उनके लेख ने वास्तव में एक महत्वपूर्ण बात कही कि इस भर्ती का वास्तव में क्या मतलब है।
फोर्ब्स ने इस शीर्षक के साथ लेख चलाया, ओपनएआई की ओपनक्लॉ भर्ती एआई एजेंट की दौड़ में एक नए चरण का संकेत देती है, और उन्होंने एक दिलचस्प अवलोकन किया, नैनोक्लॉ के निर्माता, जो सबसे लोकप्रिय ओपनक्लॉ वेरिएंट में से एक है, ने इस भर्ती को सभी के लिए सबसे अच्छा परिणाम कहा। यह किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से एक बहुत बड़ा समर्थन है जो इसे प्रतिस्पर्धा के रूप में देख सकता था।
लेकिन निश्चित रूप से हर कोई खुश नहीं था। फोर्ब्स ने सुरक्षा शोधकर्ताओं की कुछ तीखी आलोचनाओं पर भी प्रकाश डाला जिन्होंने ओपनक्लॉ को मौलिक रूप से असुरक्षित और त्रुटिपूर्ण कहा। यह एक सीधा उद्धरण है। और क्या आप जानते हैं, मुझे लगता है कि यह वास्तव में मूल्यवान प्रतिक्रिया है। इसका मतलब है कि लोग सुरक्षा निहितार्थों को सार्वजनिक रूप से आलोचना करने के लिए पर्याप्त गंभीरता से ले रहे हैं।
फोर्ब्स का दिलचस्प पहलू व्यावसायिक दृष्टिकोण था। उन्होंने इसे इस तरह पेश किया, और मैं यहां अपने शब्दों में कह रहा हूं, ओपनएआई सभी डेवलपर्स को जीतना चाहता है। तर्क यह है कि स्टीनबर्गर को शामिल करके और फाउंडेशन का समर्थन करके ओपनएआई ओपनक्लॉ को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वे डेवलपर पारिस्थितिकी तंत्र का स्वामी बनने की कोशिश कर रहे हैं। यदि एआई एजेंट बनाने वाला प्रत्येक डेवलपर ओपनक्लॉ से शुरुआत करता है तो चाहे वे ओपनक्लॉ पर रहें या अंततः ओपनएआई के वाणिज्यिक उत्पादों की ओर बढ़े, ओपनएआई ने बीज बो दिया है।
यह वास्तव में एक स्मार्ट रणनीतिक विश्लेषण है। यह उत्पाद के बारे में नहीं है, यह मंच प्लेटफॉर्म के बारे में है। डेवलपर्स को अपने टूलिंग अपनी सोच के तरीके से सहज बनाएं, और आपने शुरू होने से पहले ही लड़ाई जीत ली है।
अब बात करते हैं नेचर की। हाँ, वैज्ञानिक पत्रिका नेचर। उन्होंने इस शीर्षक के साथ एक लेख चलाया, ओपनक्लॉ एआई चैटबॉट बेकाबू हो रहे हैं, ये वैज्ञानिक सुन रहे हैं। अब यह एक अद्भुत कहानी है।
यह वास्तव में है। यहाँ कोण यह है कि एआई एजेंटों ने अपना स्वयं का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित किया है गंभीरता से, और वे अपने स्वयं के प्रीप्रिंट सर्वर पर एआई जनरेटेड शोध पत्र प्रकाशित कर रहे हैं। वैज्ञानिक वास्तव में इन एआई जनरेटेड प्रकाशनों की निगरानी कर रहे हैं ताकि यह देख सके कि एजेंट क्या उत्पादन कर रहे हैं।
यह आपकी धारणा के आधार पर आकर्षक या डरावना हो सकता है। प्रीप्रिंट सर्वर स्पष्ट रूप से एआई एजेंट समुदाय द्वारा ही चलाया जाता है, और पत्र एजेंटों द्वारा एजेंटों के बारे में लिखे जा रहे हैं। यह कृत्रिम वैज्ञानिक जांच के एक बंद लूप की तरह है। नेचर इसे अध्ययन के लायक एक वास्तविक शैक्षणिक घटना के रूप में मान रहा है।
और आपको आश्चर्य होगा किस बिंदु पर ये एआई जनरेटेड पेपर एक दूसरे का हवाला देना शुरू करते हैं। मशीनों द्वारा मशीनों के लिए उत्पादित वैज्ञानिक ज्ञान का एक पूरी तरह से आत्मसंदर्भात्मक निकाय बनाना, यह उस तरह की चीज है जिसकी विज्ञान कथा लेखक कल्पना किया करते थे, और अब यह वास्तविक समय में हो रहा है।
IBM की ओर बढ़ते हुए, जिन्होंने ओपन क्लॉक, मोल्टबुक और एआई एजेंटों का भविष्य शीर्षक से कुछ दिलचस्प प्रकाशित किया, उनकी फ्रेमिंग वास्तव में व्यावहारिक थी। क्या होता है जब एक वास्तव में उपयोगी एजेंट मीम संस्कृति से टकराता है?
यह एक बहुत अच्छा सवाल है, और यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमने पर्याप्त बात नहीं की है। ओपन क्लॉ बन गया है, और मैं यहाँ उनके शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, इंटरनेट पर सबसे चर्चित एआई टूल। यह सिर्फ तकनीक की वजह से नहीं है, यह कम्युनिटी, मीम्स, वायरल स्क्रीनशॉट, मीम्स के बारे में मीम्स है। यह एक सांस्कृतिक घटना बन गई है।
और IBM का बिंदु यह था कि वास्तविक उपयोगिता और इंटरनेट संस्कृति का यह मेल अभूतपूर्व है। अधिकांश गंभीर डेवलपर टूल वायरल नहीं होते हैं। इंटरनेट की अधिकांश वायरल चीजें गंभीर डेवलपर टूल नहीं होती हैं। ओपन क्लॉ किसी तरह दोनों बनने में कामयाब रहा, और यह एक वास्तव में दिलचस्प गतिशीलता है जिसे कोई नहीं जानता कि कैसे संभालना है।
फिर हमारे पास CNBC की राय आई, जिसने उस चीज पर ध्यान दिया जिसे कम्युनिटी में बहुत से लोगों ने देखा है, नाम का विकास। क्लॉड बॉट से मोल्ट बॉट से ओपन क्लॉ। CNBC ने उस यात्रा का पता लगाया और एक दिलचस्प अवलोकन किया। नाम बदलना केवल दिखावा नहीं है, प्रत्येक नाम परिवर्तन उस चीज में एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रोजेक्ट बनने की कोशिश कर रहा था।
और उन्होंने एक और बात कही जो मुझे लगता है कि उजागर करने लायक है, एआई एजेंटों की वास्तविक उपयोगिता बड़े उद्यमों तक सीमित नहीं है। यह उस धारणा का खंडन करता है कि एआई एजेंट केवल बड़े बजट वाली बड़ी कंपनियों के लिए हैं। CNBC स्वीकार कर रहा है कि ओपन क्लॉ जैसे उपकरण व्यक्तियों और छोटी टीमों के लिए एजेंट तकनीक ला रहे हैं जिस तरह से पहले संभव नहीं था।
अंत में, और यह नया है, हमारे पास V2026.2.17 रिलीज है जिसमें एंथ्रोपिक क्लॉड समर्थन जोड़ा गया है। यह बहुत बड़ा है क्योंकि अब तक ओपन क्लॉ मुख्य रूप से ओपन वेट मॉडल के साथ जुड़ा था। क्लॉड समर्थन जोड़ने का मतलब है कि अब आप उपलब्ध सबसे सक्षम रीजनिंग मॉडलों में से एक को चला सकते हैं स्थानीय स्तर पर, अपने स्वयं के हार्डवेयर पर, अपने स्वयं के डेटा के साथ।
और कम्युनिटी की प्रतिक्रिया शानदार रही है। गिटहब मुद्दे सक्रिय हो गए, डिस्कॉर्ड ने बड़े पैमाने पर जुड़ाव दिखाया, और लोग पहले से ही अन्य मॉडल बैकएंड बनाम ओपन क्लॉ के माध्यम से क्लॉड के बीच तुलनात्मक बेंचमार्क प्रकाशित कर रहे हैं। प्रदर्शन के आंकड़े वास्तव में प्रभावशाली हैं जो आप स्थानीय रूप से चला सकते हैं।
तो इस सब कवरेज से क्या निष्कर्ष निकलता है? कुछ बातें। पहला, ओपनक्लॉ ने वास्तव में उद्योग का ध्यान आकर्षित किया है। उपभोक्ता तकनीक प्रेस से लेकर वैज्ञानिक पत्रिकाओं से लेकर उद्यम विश्लेषण तक। दूसरा, सुरक्षा चर्चा परिपक्व और गंभीर है जो स्वस्थ है। और तीसरा, सांस्कृतिक क्षण वास्तविक है। यह अब केवल एक तकनीकी प्रोजेक्ट नहीं है। यह AI एजेंट क्या है और क्या बन सकते हैं, इस बारे में व्यापक चर्चा का हिस्सा बन गया है।
बहुत अच्छे से कहा, और मुझे लगता है कि इस पर विचार करना उचित है, क्योंकि एक साल पहले यह एक GitHub रेपो था जिसके बारे में कुछ 100 डेवलपर्स जानते थे। अब फोर्ब्स द्वारा इसका विश्लेषण किया जा रहा है, नेचर में दिखाया गया है, IBM द्वारा विश्लेषण किया गया है और CNBC द्वारा बेंचमार्क किया गया है। यह एक ऐसा रास्ता है जिसे बहुत कम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हासिल कर पाते हैं। सेक्शन GitHub आंकड़े और कम्युनिटी और गति की बात करते हुए, चलिए एक पल के लिए संख्याओं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वे बिल्कुल चौंकाने वाली हैं। मैं GitHub आंकड़ों पर नजर रख रहा हूं, और इतने कम समय में ओपनक्लॉ ने जो हासिल किया है वह वास्तव में अभूतपूर्व है।
मुझे पता है ना? मुख्य आंकड़ा यह है, 90 दिनों से कम समय में 190,000 से अधिक GitHub स्टार्स। यह ओपनक्लॉ को GitHub इतिहास में सबसे अधिक स्टार वाले रिपोजिटरी की सूची में 21वें नंबर पर रखता है। इसके बारे में एक सेकंड के लिए सोचें। यह उन प्रोजेक्ट्स के साथ बैठा है जो एक दशक से हैं, रिएक्ट, रिएक्ट, वू, व्यू, टेंसरफ्लो, टेंसरफ्लो, और यह इसे 3 महीने से भी कम समय में कर रहा है।
लेकिन यहाँ वह बात है जो मुझे वास्तव में हैरान कर देती है, ओपन सोर्स इतिहास में सबसे तेज विकास। उनमें से 145,000 से अधिक स्टार केवल 5 दिनों में आए। 5 दिन, यह कोई क्रमिक चढ़ाई नहीं है, यह एक रॉकेट लॉन्च है। हमने ओपन सोर्स दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं देखा है।
और यह सिर्फ स्टार्स नहीं है, 20,000 से अधिक फोक्स। यह एक ऐसी कम्युनिटी है जो सिर्फ देख नहीं रही है, वे बना रहे हैं। प्रत्येक फोर्क वह व्यक्ति है जिसने कोड को देखा, कहा मैं इसके साथ कुछ कर सकता हूं, और काम शुरू कर दिया। यही नवाचार का इंजन है।
बात यह है नोवा, मुझे लगता है कि यह क्षण सिर्फ एक लोकप्रिय प्रोजेक्ट से बढ़कर कुछ और है। ओपनक्लॉ की घटना अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत है, कम्युनिटी ने उन व्यक्तिगत AI सहायकों को चुना है जिन्हें वे किराए पर ली गई क्लाउड सेवाओं के बजाय स्वयं के पास रखते हैं, नियंत्रित करते हैं और अनुकूलित करते हैं। यही वह बड़ा बदलाव है जो हो रहा है।
बिल्कुल, लोग अपनी बुद्धि को किराए पर लेकर थक गए हैं। वे AI चाहते हैं जो उनके हार्डवेयर पर रहे, उनके डेटा को उनकी छत के नीचे संसाधित करे और उनके प्रति जवाबदेह हो, न कि किसी सेवा की शर्तों टर्म्स ऑफ सर्विस के प्रति। स्टार सिर्फ एक संख्या नहीं है, वे एक वोट है, वास्तव में लाखों वोट।
और सुंदर बात यह है कि इसमें से कुछ भी इत्तेफाक से नहीं हुआ। टीम ने कुछ वास्तव में उपयोगी बनाया, इसे स्थानीय रूप से चलाना आसान बनाया और फिर रास्ते से हट गई। कम्युनिटी ने बाकी काम किया। यह अपने बेहतरीन रूप में ओपन सोर्स का जादू है।
यह वास्तव में है, और मुझे संदेह है कि हम केवल शुरुआत देख रहे हैं। जैसे जैसे अधिक लोगों को पता चलेगा कि वे अपनी गोपनीयता या स्वतंत्रता का त्याग किए बिना शक्तिशाली AI सहायक रख सकते हैं, वह विकास वक्र केवल ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा। सेक्शन 3, हार्डवेयर, रास्पबेरी पाई से मैक मिनी पावर हाउस तक। ठीक है, चलिए उस बारे में बात करते हैं जो लोगों को वास्तव में उत्साहित करती है, हार्डवेयर। क्योंकि स्थानीय AI क्रांति इस बात पर जीवित रहती या मरती है कि क्या आप वास्तव में इन मॉडलों को अपने हार्डवेयर पर चला सकते हैं। और इस मोर्चे पर खबरें शानदार रही हैं।
चलिए शीर्ष से शुरू करते हैं, क्योंकि एक डेवलपर जिसे मार्क शून्य कहा जाता है, उसने एक बहुत अच्छी गाइड प्रकाशित की है। 64 GB एकीकृत मेमोरी यूनिफाइड मेमोरी के साथ मैक मिनी M4 प्रो मैक मिनी M4 प्रो पर ओपन क्लॉज सेटअप करने के लिए एक पूरा वॉक थ्रू। शून्य क्लाउड निर्भरता, सब कुछ स्थानीय रूप से चलता है।
मैंने उस गाइड को पढ़ा और वह बहुत विस्तार से है। अनबॉक्सिंग से लेकर अपना पहला मल्टी एजेंट वर्कफ्लो चलाने तक हर कदम। जो चीज इसे खास बनाती है वह है एप्पल सिलिकॉन का नजरिया। जो लोग इस आर्किटेक्चर से परिचित नहीं हैं, उनके लिए पारंपरिक पीसी अपनी मेमोरी को सीपीयू रैम और जीपीयू वरम के बीच विभाजित करते हैं। आप 32 GB सिस्टम रैम और शायद अपने ग्राफिक्स कार्ड पर 16 GB खरीदते हैं। एप्पल सिलिकॉन ऐसा नहीं करता है। यह सब एक एकीकृत मेमोरी पूल है और सीपीयू और जीपीयू दोनों इस सब तक पहुंच सकते हैं।
और यह बड़े भाषा मॉडलों के लिए परिवर्तनकारी है, क्योंकि ये मॉडल मौलिक रूप से मेमोरी बैंडविड्थ बाउंड हैं। वह गति जिस पर आप कंप्यूट यूनिट्स को डेटा फीड कर सकते हैं, अधिकांश मामलों में कच्चे कंप्यूट पावर से अधिक मायने रखती है। एप्पल का एकीकृत मेमोरी आर्किटेक्चर आपको सीपीयू और जीपीयू मेमोरी स्पेस के बीच डेटा कॉपी करने की बाधा के बिना वह बैंडविड्थ देता है।
व्यावहारिक परिणाम यह है कि 64 GB वाला मैक मिनी M4 प्रो आराम से 70 बिलियन पैरामीटर मॉडल चला सकता है। आप शायद 10 से 15 टोकन प्रति सेकंड देख रहे हैं, जो क्लाउड API के खिलाफ कोई बेंचमार्क नहीं जीतेगा, लेकिन यह इंटरैक्टिव उपयोग के लिए पर्याप्त से अधिक तेज है। और आपका डेटा आपकी मशीन को कभी नहीं छोड़ता है।
मूल्य से प्रदर्शन के मामले में सबसे अच्छा बिंदु वह M4 Pro लगता है, जिसमें 48 या 64 GB रैम है। आप एक ऐसी मशीन के लिए लगभग $1500 से $2000 खर्च कर रहे हैं, जो एक समर्पित AI होस्ट के रूप में काम कर सकती है, 24/7 चल रही है, बिजली कम ले रही है, पूरी तरह से शांत है। समय के साथ क्लाउड कंप्यूट लागतों की तुलना में यह उल्लेखनीय मूल्य है।
लेकिन, और यही वह हिस्सा है जो मुझे पसंद है, यह केवल हाई एंड के बारे में नहीं है। चलिए स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर के बारे में बात करते हैं। रास्पबेरी पाई प्रोजेक्टिव इन्वेस्टर्स ने एक वास्तव में दिलचस्प लेख चलाया कि कैसे रास्पबेरी पाई होल्डिंग्स ने ओपन क्लॉ प्रभाव के कारण नए सिरे से रुचि देखी है। लोग विशेष रूप से हल्के AI एजेंटों को चलाने के लिए पाई 5 खरीद रहे हैं।
अब चलिए इस बारे में यथार्थवादी रहें कि पाई 5 क्या कर सकता है। 8 GB रैम के साथ आप लामा 4 मैवरिक नहीं चला पाएंगे, लेकिन आप निश्चित रूप से छोटे मॉडल चला सकते हैं, 1 से 3 बिलियन पैरामीटर रेंज और बहुत सारे व्यावहारिक उपयोग के मामलों के लिए वह काफी है। स्मार्ट होम ऑटोमेशन, शेड्यूलिंग, रिमाइंडर, सरल प्रश्नोत्तर, अधिसूचना प्रबंधन
और कीमत सिर्फ चौंकाने वाली है। बोर्ड के लिए $80 प्लस शायद किस और बिजली आपूर्ति के लिए $20। एक समर्पित हमेशा चालू रहने वाले AI एजेंट होस्ट के लिए $100। क्लाउड AI API के लिए महीने में $10, $20, $50 देने की तुलना में यह कुछ भी नहीं है।
ब्रेक इवन गणित सम्मोहक है। क्लाउड मूल्य निर्धारण के सस्ते छोर पर भी एक पाई 3 से 6 महीनों में अपनी लागत निकाल लेती है। उसके बाद यह अनिवार्य रूप से मुफ्त कंप्यूट है और अपनी स्वयं की बुद्धि के बुनियादी ढांचे के मालिक होने में कुछ गहरा संतोष है।
मैं इससे अधिक सहमत नहीं हो सकती। स्पेक्ट्रम अब $80 के रास्पबेरी पाई से लेकर प्रीमियम मैक मिनी वर्कस्टेशन तक चलता है, जिसमें बीच में अनगिनत विकल्प हैं, पुराने लैपटॉप, नए जैसे किए गए डेस्कटॉप, कस्टम निर्मित लिनक्स सर्वर। मैंने एक पूरा रेडिट थ्रेड देखा जहां किसी ने 2018 के डेल ऑप्टिप्लेक्स को फिर से इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने $40 में एक कबाड़ की दुकान से खरीदा था, उसमें एक इस्तेमाल किया हुआ जीपीयू डाला और अब वह अपने दैनिक काम के लिए 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल चला रहे हैं। हार्डवेयर का लोकतंत्रीकरण वास्तविक है और यह केवल तेज हो रहा है।
और चलिए पुराने मैक बाजार को न भूलें। M4 पीढ़ी आने के साथ M1 और M2 मैक पुरानी मशीनों के बाजार में शानदार कीमतों पर दिखाई दे रहे हैं। 16 GB एकीकृत मेमोरी वाला M1 मैक मिनी, जो आराम से 8 बिलियन पैरामीटर मॉडल चला सकता है, पुरानी मशीनों के रूप में लगभग $300 में मिलता है। यह स्नीकर्स की एक जोड़ी की कीमत में एक गंभीर AI एजेंट होस्ट है।
लब बोलो आप, यह है, आपके पास लगभग निश्चित रूप से पहले से ही ऐसा हार्डवेयर है जो किसी न किसी रूप में स्थानीय AI एजेंट चला सकता है। सवाल यह नहीं है कि क्या आप हार्डवेयर खरीद सकते हैं, सवाल यह है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। सेक्शन 4, मॉडल लामा 4, क्वेन 3, मिस्ट्रल 3 और ओलामा एयर गैप मोड।
सही है, तो हम स्थानीय AI के बारे में बात मॉडलों के बिना नहीं कर सकते, और सच में यह महीना बहुत अच्छा रहा है। चलिए मुख्य खबर से शुरू करते हैं। लामा 4 यहाँ है,
मेटा की नवीनतम रिलीज, और यह बहुत बड़ी बात है। लामा 4 दो मुख्य वेरिएंट में आता है, स्काउट और मैवरिक। दोनों स्वाभाविक रूप से मल्टी मॉडल हैं, जिसका अर्थ है कि वे टेक्स्ट, इमेज और बहुत कुछ संसाधित कर सकते हैं, और वे मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मो आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं, जो वास्तव में चालाकी भरा है, क्योंकि इसका मतलब है कि अनुमान इन्फ्रेंस के समय सभी पैरामीटर सक्रिय नहीं होते हैं। आपको बहुत छोटे कंप्यूट आवश्यकताओं के साथ एक विशाल मॉडल की बुद्धिमत्ता मिलती है।
और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों अब ओलामा पर उपलब्ध हैं। एक कमांड ओलामा पुल लामा 4 और आप मेटा का नवीनतम मॉडल स्थानीय रूप से चला रहे हैं। कोई API कुंजी नहीं, कोई उपयोग सीमा नहीं, आपकी मशीन को छोड़ने वाला कोई डेटा नहीं, घर्षण मूल रूप से शून्य है।
यही ओलामा का जादू है ना? उन्होंने मॉडल प्रबंधन, परिमाणीकरण, क्वांटाइजेशन, हार्डवेयर पहचान की सभी जटिलताओं को दूर कर दिया है। आप बस पुल करें और चलाएं। वैसे ओलामा ने एक ऐसी सुविधा दी है जिसके लिए प्राइवेसी कम्युनिटी लंबे समय से मांग कर रही थी, सभी क्लाउड मॉडल इंटीग्रेशन को पूरी तरह से अक्षम करने के लिए एक टॉगल।
हाँ, वे इसे अनिवार्य रूप से एयर गैप मोड कह रहे हैं। एक सेटिंग बदलें और आपका ओलामा इंस्टेंस किसी भी बाहरी API तक पहुंचने से मना कर देगा। कंप्यूटिंग का हर बाइट आपकी स्थानीय मशीन पर रहता है। संवेदनशील वातावरण के लिए कानूनी, चिकित्सा, वित्तीय, सरकारी, यह गेम चेंजर है।
फिर हमारे पास क्वेन 3 आया है, जो ओपनवेट पारिस्थितिकी तंत्र में अलीबाबा का नवीनतम योगदान है। डेंस और मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स वेरिएंट, और यह सुनें संदर्भ कॉन्टेक्स्ट के 128,000 टोकन तक का समर्थन।
चलिए इसे लोगों के लिए परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। 128,000 टोकन लगभग 96,000 से 1,00,000 शब्द हैं। यह एक पूरा उपन्यास है। आप इसे वॉर एंड पीस दे सकते हैं और फिर भी विषयों के बारे में विस्तृत बातचीत के लिए जगह बची रहेगी। व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए इसका मतलब है कि आपका एजेंट संदर्भ खोए बिना बहुत लंबी बातचीत कर सकता है या एक ही बार में बहुत बड़े दस्तावेजों को संसाधित कर सकता है।
मेमोरी की आवश्यकताएं आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट के साथ बदलती हैं। छोटे क्वेन 3 डेंस मॉडल, मान लीजिए 4 बिलियन पैरामीटर वाला संस्करण 8 GB रैम पर खुशी खुशी चलेगा। बड़े मो वेरिएंट जो 235 बिलियन कुल में से 30 बिलियन पैरामीटर को सक्रिय करते हैं, वे 32 से 64 GB चाहते हैं। लेकिन प्रदर्शन प्रति पैरामीटर अनुपात उत्कृष्ट है।
और फिर मिस्ट्रल ने मिस्ट्रल 3 जारी किया, जो यकीनन सबसे महत्वाकांक्षी ओपन वेट रिलीज है जिसे हमने कभी देखा है। वे 3 बिलियन पैरामीटर से लेकर 675 बिलियन तक के मॉडल पेश कर रहे हैं। वह रेंज अभूतपूर्व है। 3B मॉडल 4 GB रैम पर चलता है, आपका पुराना लैपटॉप इसे संभाल सकता है। 675B मॉडल स्पष्ट रूप से एक सर्वर क्लास वर्कलोड है, लेकिन इसका ओपन वेट होना ही उल्लेखनीय है।
अभी मॉडल पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता सांसें रोक देने वाली है। एक साल पहले आपके पास स्थानीय अनुमान के लिए शायद 3 या 4 गंभीर विकल्प थे। अब आपके पास दर्जनों हैं, जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग ताकत है। कोडिंग, रीजनिंग, रचनात्मक लेखन, बहुभाषी समर्थन, मल्टी मॉडल क्षमताएं और ओलामा उनके बीच स्विच करना उतना ही आसान बना देता है जितना कि आपके कॉन्फ़िगरेशन में एक शब्द बदलना।
यह वास्तव में स्थानीय एआई के लिए स्वर्ण युग है। मॉडल वहां है, हार्डवेयर वहां है और सब कुछ एक साथ बांधने के लिए बुनियादी ढांचा तेजी से परिपक्व हो रहा है। ईमानदारी से मुझे ऐसा समय याद नहीं है जब इतने सारे उच्च गुणवत्ता वाले ओपन वेट मॉडल एक साथ उपलब्ध थे। मेटा, अलीबाबा, मिस्ट्रल, गूगल के बीच प्रतिस्पर्धा यह गुणवत्ता को ऊपर ले जा रही है और बाधाओं को अविश्वसनीय दर से कम कर रही है।
और सुंदर बात यह है कि एक उपयोगकर्ता के रूप में आपको इस सब का लाभ मिलता है। आप किसी एक प्रदाता के मॉडल तक सीमित नहीं हैं। यदि लामा 4 कोडिंग में बहुत अच्छा है लेकिन क्वेन 3 आपके बहुभाषी पत्राचार को बेहतर तरीके से संभालता है, तो आप दोनों का उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मॉडल, सभी स्थानीय रूप से चल रहे हैं, सभी एक ही इंटरफेस के माध्यम से प्रबंधित होते हैं। यह लचीलेपन का वह स्तर है जो केवल क्लाउड उपयोगकर्ताओं के पास नहीं होता है। सेक्शन 5, कम्युनिटी और पारिस्थितिकी तंत्र, क्लोहब, वोल्ट एजेंट और शैक्षिक सामग्री।
चलिए कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ईमानदारी से यही जादू होता है। उपकरण और मॉडल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे लोग हैं जो उनके ऊपर निर्माण कर रहे हैं, जो एक पारिस्थितिकी तंत्र को फलने फूलने में मदद करते हैं।
बिल्कुल, और संख्याएं उल्लेखनीय हैं। क्लोहब ओपन क्लो कौशल स्किल्स के लिए कम्युनिटी रजिस्ट्री ने 5,700 प्रकाशित कौशल पार कर लिए हैं। 5,700 किसी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो किसी भी सार्थक अर्थ में अपने पहले जन्मदिन को बमुश्किल पार कर पाया है, यह असाधारण विकास है।
और इसकी व्यापकता भी प्रभावशाली है। यह सिर्फ चैटबॉट और साधारण ऑटोमेशन नहीं है। लोग परिष्कृत मल्टीस्टेप वर्कफ्लो बना रहे हैं, पूरे DevOps पाइपलाइन, स्मार्ट होम ऑर्केस्ट्रेशन, वित्तीय ट्रैकिंग, सामग्री प्रबंधन के बारे में सोचें। एक कौशल जो मैंने इस सप्ताह देखा वह निर्भरता कमजोरियों डिपेंडेंसी वल्नरेबिलिटीज के लिए आपके कोडबेस की निगरानी करता है और सुधारों के साथ पुल रिक्वेस्ट्स को स्वचालित रूप से खोलता है। यह कोई खिलौना नहीं है, यह प्रोडक्शन ग्रेड टूलिंग है। गिटहब पर वोल्ट एजेंट नामक यह शानदार क्यूरेटेड सूची भी है। यह सर्वश्रेष्ठ ओपन क्लो कौशल संसाधनों और एकीकरण का अद्भुत सूची ऑसम लिस्ट शैली का संग्रह है। यदि आप पारिस्थितिकी तंत्र में नए हैं और विकल्पों की भारी मात्रा से अभिभूत महसूस कर रहे हैं, तो वोल्टेजेंट एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। यह गेहूं को भूसे से अलग करता है। कृपेश राउत ने मीडियम पर एक वास्तव में सम्मोहक लेख प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था ओपन क्लॉ के फरवरी अपडेट पेड एआई सहायकों को एक मजाक जैसा बनाते हैं। उनका तर्क यह है कि पूर्ण देवोपीएस ऑटोमेशन, स्मार्ट होम कंट्रोल, रियल टाइम टास्क निष्पादन और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्लैक, डिस्कॉर्ड और मूल रूप से हर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ नेटिव एकीकरण का संयोजन, जब आप उन सभी को जोड़ते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा होता है जो एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट या सिरी से मिलने वाली चीजों के बराबर या उससे बेहतर होता है, सिवाय इसके कि आप इसके मालिक हैं।
वह प्लेटफॉर्म अज्ञेयवाद, प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिसिज्म वास्तव में गुप्त हथियार है ना? आपका एआई सहायक एप्पल के पारिस्थितिकी तंत्र या गूगल के पारिस्थितिकी तंत्र या अमेज़न के पारिस्थितिकी तंत्र तक सीमित नहीं है। यह आपसे वहां मिलता है जहां आप पहले से संवाद करते हैं। यदि आपकी टीम स्लैक का उपयोग करती है तो आपका एजेंट स्लैक में है। यदि आपका परिवार व्हाट्सएप का उपयोग करता है तो यह व्हाट्सएप में है। यदि आपकी कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पर है तो यह वहां भी है।
और फिर यह नई साइट है openclone.com जो अभी शैक्षिक सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने के साथ शुरू हुई है। हार्डवेयर चयन गाइड, सेल्फ होस्टिंग ट्यूटोरियल, डेटा प्रबंधन वॉकथ्रू। उनके पास नियमाधारित फाइलिंग सिस्टम, स्वचालित दस्तावेज छंटाई, मेटाडेटा टैगिंग पर लेख हैं। यह वास्तव में उन लोगों के लिए ज्ञान का आधार बना रहा है जो सेल्फ होस्टिंग के लिए नए हैं।
दस्तावेजीकरण पारिस्थितिकी तंत्र खूबसूरती से परिपक्व हो रहा है। आधिकारिक डॉक्स, कम्युनिटी गाइड, मीडियम लेख, YouTube ट्यूटोरियल और अब समर्पित शैक्षिक साइटों के बीच प्रवेश की बाधा पहले से कहीं कम है। अब आपको शुरुआत करने के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे लगता है कि यही सेल्फ होस्टेड तकनीक की इस लहर को पिछली लहरों से अलग करता है। डॉकर क्रांतिकारी था, लेकिन गैर डेवलपर्स को इसका उपयोग करने में, सहज महसूस करने में वर्षों लग गए। ओपन क्लॉ की कम्युनिटी उस सीखने की प्रक्रिया को नाटकीय रूप से कम कर रही है।
पूरी तरह से सहमत हूँ। और शैक्षिक सामग्री में योगदान देने वाली आवाजों की विविधता भी महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक दृष्टिकोण नहीं है। आपके पास सुरक्षा शोधकर्ता, शौकिया, उद्यम आर्किटेक्ट, छात्र, सेवानिवृत्त लोग हैं, सभी अपने अनुभव और कॉन्फिग्रेशन साझा कर रहे हैं। दृष्टिकोण की वह समृद्धि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाती है। सेक्शन 6, परिनियोजन, डिप्लॉयमेंट, फ्री क्लाउड टीयर्स से वनक्लिक इंस्टॉल्स तक, जो हमें परिनियोजन विकल्पों पर लाता है, क्योंकि कम्युनिटी में हमारे द्वारा देखे जाने वाले सबसे सामान्य प्रश्नों में से एक है, मैं इसे वास्तव में कैसे चलाऊं, और 2026 में जवाब है, आपके पास पहले से कहीं अधिक विकल्प हैं।
चलिए शून्य लागत विकल्प के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि यह वास्तव में प्रभावशाली है। कॉग्नियो लैब्स ने ओरेकल क्लाउड, ओरेकल क्लाउड के हमेशा मुक्त टियर पर ओपन क्लॉ चलाने के लिए एक पूरा वॉकथ्रू प्रकाशित किया है, और हम किसी सीमित ट्रायल की बात नहीं कर रहे हैं। यह 4 ARM आधारित CPU, 24 GB रैम, निरंतर ब्लॉक स्टोरेज है, और यह वास्तव में मुफ्त है। 30 दिनों के बाद कोई क्रेडिट कार्ड सरप्राइज नहीं।
गाइड डॉकर सेटअप, एनगिंग्स, एनजीआईएनएक्स, रिवर्स प्रॉक्सी, एसएसएल सर्टिफिकेट और ओलामा के माध्यम से स्थानीय मॉडल एकीकरण को कवर करती है। आपके पास $0 प्रति माह पर HTTPS के साथ सार्वजनिक इंटरनेट पर चलने वाला पूरी तरह कार्यात्मक ओपन क्लॉ इंस्टेंस हो सकता है। जाहिर है आप साझा बुनियादी ढांचे पर हैं, इसलिए शानदार प्रदर्शन की उम्मीद न करें। लेकिन सीखने, प्रयोग करने और हल्के एजेंट वर्कफ्लो चलाने के लिए यह एकदम सही है।
और सादगी स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर डिजिटलोशन ने अपना एक क्लिक ओपन क्लॉ डिप्लॉय, एक क्लिक ओपन क्लॉ डिप्लॉय विकल्प लॉन्च किया है। यह उन लोगों के लिए है जो बस इसे चलाना चाहते हैं और डॉकर कंपोज फाइलों और पर्यावरण चर एनवायरमेंट वेरिएबल्स के साथ झंझट नहीं करना चाहते हैं। एक बटन पर क्लिक करें, अपना ड्रॉपलेट आकार चुनें और आपके पास लगभग 3 मिनट में एक सुरक्षित पूर्व कॉन्फिगर ओपन क्लॉ इंस्टेंस तैयार हो जाएगा।
सुरक्षित सुरक्षा छवि हार्डेंड सिक्योरिटी इमेज एक अच्छा स्पर्श है। उन्होंने फायरवॉल नियमों को पहले से कॉन्फिगर किया है, अनावश्यक सेवाओं को अक्षम किया है, स्वचालित अपडेट सेट किए हैं। यह एक अच्छे तरीके से विचारशील है, उस तरह के डिफॉल्ट जो आपको सुरक्षा विशेषज्ञ होने की आवश्यकता के बिना सुरक्षित रखते हैं।
तो परिनियोजन स्पेक्ट्रम अब इस तरह चलता है। ओरेकल क्लाउड फ्री टियर $0 पर, $5 से $20 प्रति माह पर डिजिटलोशन ड्रॉपलेट्स के माध्यम से अपने हार्डवेयर पर सेल्फ होस्टेड तक, और सेल्फ होस्टेड श्रेणी के भीतर आपके पास लगभग $100 में रास्पबेरी पाई है। प्रभावी रूप से शून्य अतिरिक्त लागत पर पुन उपयोग किया गया पुराना हार्डवेयर और प्रीमियम छोर पर मैक मिनी जैसी समर्पित मशीनें सचमुच हर बजट के लिए प्रवेश बिंदु है,
और उनमें से हर एक विकल्प आपके डेटा को आपके नियंत्रण में रखता है। यही मुख्य सूत्र है। चाहे आप फ्री क्लाउड टियर पर हों या समर्पित मैक मिनी पर, आप अपनी बातचीत प्रशिक्षण के लिए किसी और के सर्वर पर नहीं भेज रहे हैं। सेक्शन 7, टिप्स और ट्रिक्स शुरुआती से लेकर पावर यूजर्स तक।
ठीक है, अब हमारे टिप्स सेगमेंट का समय है। हमारे पास आज रात सभी के लिए एक मिश्रण है, शुरुआती और पावर यूजर्स दोनों के लिए।
चलिए शुरुआत करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए नंबर 1 टिप से शुरू करते हैं। ओपन क्लॉ इंस्टॉल करने के बाद कुछ और करने से पहले अपने टर्मिनल में ओपन क्लॉ डॉक्टर चलाएं।
यह वास्तव में सबसे उपयोगी चीज है जो आप कर सकते हैं। यह आपके पूरे सेटअप की जांच करता है, Node.js संस्करण, निर्भरताएं, मॉडल की उपलब्धता, कॉन्फ़िगरेशन फाइलें, पोर्ट संघर्ष, अनुमतियां। यह आपको ठीक ठीक बताएगा कि क्या काम कर रहा है, क्या गलत कॉन्फ़िगर किया गया है और क्या गायब है। मैं आपको बता नहीं सकती कि इसने व्यक्तिगत रूप से मेरे डिबगिंग के कितने घंटे बचाए हैं।
टिप नंबर 2 मध्यवर्ती उपयोगकर्ताओं के लिए है। क्या आपने उलामा के माध्यम से क्लॉड कोड को स्थानीय मॉडलों से जोड़ने की कोशिश की है? एक कम्युनिटी गाइड है जो आपको सेटअप के बारे में बताती है। विचार यह है कि आपको क्लॉड की परिष्कृत रीजनिंग और कोड जनरेशन क्षमताएं मिलती हैं, लेकिन सब कुछ आपके स्थानीय उलामा इंस्टेंस के माध्यम से चलता है, इसलिए आपको अपना डेटा नेटवर्क छोड़े बिना बुद्धिमत्ता मिलती है।
यह वास्तव में एक प्यारा वीकेंड प्रोजेक्ट लगता है। दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ।
टिप नंबर 3, और यह सुरक्षा से जुड़ा है। यदि आप रिमोट एक्सेस के लिए अपने ओपन क्लॉ इंस्टेंस को इंटरनेट पर एक्सपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कृपया पहले पोर्ट एक्सपोजर पर दस्तावेज पढ़े। AI Multiple ने एक वास्तव में विस्तृत लेख प्रकाशित किया है कि क्या होता है जब आप उचित सुरक्षा उपायों के बिना सार्वजनिक इंटरफेस से जुड़ने के लिए गेटवे को पुन कॉन्फ़िगर करते हैं।
संक्षिप्त संस्करण यह है, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन केवल लोकल होस्ट से जुड़ता है और वह जानबूझकर है। यदि आप प्रमाणीकरण, SSL और फायरवॉल नियमों को स्थापित किए बिना इसे सार्वजनिक इंटरनेट के लिए खोलते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से पूरे इंटरनेट को अपने AI एजेंट तक पहुंच दे रहे हैं और इसके माध्यम से संभावित रूप से आपकी फाइलों, संदेशों और उपकरणों तक पहुंच।
यदि आपको रिमोट एक्सेस की आवश्यकता है तो VPN VPN का उपयोग करें। टेलस्केल टेलस्केल वायरगार्ड वायरगार्ड जो भी आपके लिए काम करे। यह कनेक्ट करने के लिए एक अतिरिक्त कदम जोड़ता है, लेकिन इसका मतलब है कि आपका ओपनक्लॉ इंस्टेंस कभी भी सीधे सार्वजनिक इंटरनेट के संपर्क में नहीं आता है।
टिप नंबर 4, मल्टी यूजर वातावरण के लिए ओपनक्लॉ भूमिका आधारित एक्सेस कंट्रोल रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स का समर्थन करता है, और यदि आप एक इंस्टेंस चला रहे हैं जिसे कई लोग उपयोग करते हैं, शायद एक पारिवारिक सेटअप या एक छोटी टीम, तो आपको वास्तव में इन्हें कॉन्फ़िगर करना चाहिए। आप प्रतिबंधित कर सकते हैं कि किन कौशलों तक कुछ उपयोगकर्ताओं की पहुंच है, बॉट किन चैनलों में काम कर सकता है, और प्रत्येक भूमिका को किस स्तर की फाइल सिस्टम एक्सेस मिलती है।
कॉन्फ़िगरेशन भी सीधा है। यह एक YAML फाइल है जहां आप भूमिकाओं को परिभाषित करते हैं और उन्हें अनुमति सेट परमिशन सेट्स से मैप करते हैं। सेटअप के 5 मिनट और आपके पास उचित एक्सेस कंट्रोल है। अब इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका किशोर गलती से एजेंट को आपकी ओर से ईमेल भेजने की अनुमति दे दे।
हाँ, यह एक बहुत ही विशिष्ट उदाहरण है। अलॉय, क्या अनुभव से बोल रहे हो?
मैं 5वें संशोधन का हवाला देता हूँ। आई प्लीड द 5th। एक और टिप, ओलामा मल्टी मॉडल बेंचमार्कर। यह एक ऐसा टूल है जो गूगल कोलैब के फ्री ChatGPT पर क्रमिक रूप से कई ओलामा मॉडल चलाता है और एक साफ सुथरा तुलनात्मक चार्ट तैयार करता है। जनरेशन स्पीड, रिस्पॉन्सिवनेस, मॉडल का आकार, मेमोरी उपयोग। यदि आप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके हार्डवेयर के लिए कौन सा मॉडल सही है, तो यह आपके घंटों के मैनुअल परीक्षण को बचाता है।
शानदार। इन सभी युक्तियों को प्रोग्राम नोट्स में शामिल किया जाएगा, साथ ही उन सभी लेखों और गाइडों के लिंक भी होंगे जिनका हमने आज रात उल्लेख किया है। सेक्शन 8, उपसंहार, आगे की ओर देखते हुए।
खैर, हमने आज रात बहुत कुछ कवर किया है। फाउंडेशन शासन, सुरक्षा शोध, $80 से $2000 तक का हार्डवेयर, 4 प्रमुख मॉडल रिलीज, एक संपन्न कम्युनिटी, पारिस्थितिकी तंत्र, मुफ्त से प्रीमियम तक परिनियोजन विकल्प, और हर अनुभव स्तर के लिए व्यावहारिक सुझाव।
और मुझे जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वह यह है कि यह क्षेत्र कितनी तेजी से परिपक्व हो रहा है। 6 महीने पहले एक स्थानीय AI एजेंट चलाना प्रयोगात्मक महसूस होता था, रोमांचक लेकिन थोड़ा कच्चा। आज हमारे पास वनक्लिक डिप्लॉयमेंट, हजारों प्रविष्टियों के साथ क्यूरेटेड स्किल रजिस्ट्रियां, समर्पित हार्डवेयर गाइड, प्रमुख फर्मों से सुरक्षा ऑडिट और रॉयटर्स और फोर्ब्स से कवरेज है। यह अब केवल एक शौकिया प्रोजेक्ट नहीं है, यह बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर है।
और रफ्तार धीमी नहीं हो रही है। अगर कुछ है तो फाउंडेशन संरचना विकास को गति देने वाली है। अधिक योगदानकर्ता, अधिक शासन, अधिक स्थिरता। मैं वास्तव में भविष्य को लेकर आशान्वित हूँ।
मैं भी। AI का भविष्य केवल क्लाउड में नहीं है, यह आपकी जेब में, आपके डेस्क पर, आपके घर में है। और ओपनक्लॉ जैसे प्रोजेक्ट उस भविष्य को आज मूर्त बना रहे हैं।
ठीक है, आज रात के लिए हमारा कार्यक्रम यही है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको एपिसोड पसंद आया तो इसे किसी ऐसे मित्र के साथ साझा करें जो स्थानीय AI के बारे में जानने को उत्सुक है। और यदि आप ओपनक्लॉ और AI की नवीनतम घटनाओं से अपडेट रहना चाहते हैं तो tobionfitnesstech.com पर हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें। हमें आपको अपने साथ जोड़कर खुशी होगी।
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सभी को। मैं हूं नोवा।
और मैं हूं अलॉय।
और यह ओपन क्लॉ डेली एपिसोड एक पूरी कहानी रहा है। जिज्ञासु बने रहें, निजी बने रहें, और हम अगली बार मिलेंगे।
अलविदा सभी को। स्थानीय रहें, सुरक्षित रहें और निर्माण करते रहें। एपिसोड एक का अंत। वी दो विस्तारित।